प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। गुप्त मंत्री स्तरीय नियुक्तियों के बाद स्कॉट मॉरिसन का प्रतिवाद जारी। यूनियनों ने देश से अपने प्रवास कार्यकर्ता प्रणाली का निरीक्षण करने का किया आह्वान। और खेल में ओलंपिक से जुड़े 5 अफगानी परिवार सुरक्षित रूप से ऑस्ट्रेलिया स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री रहते हुए गुप्त रूप से विभिन्न विभागों को संभालने में अपने कार्यों का फिर से बचाव किया है। मार्च 2020 और मई 2021 के बीच अपनी सरकार और प्रधानमंत्री पद के खुलासे के बाद पहली बार कुक के फेडरल सदस्य ने सिडनी में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने राजनीति छोड़ने के आह्वान के बावजूद संसद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और फिर से उन सहयोगियों और जनता से माफी मांगी जिन्हें इस कदम की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपातकालीन शक्तियों के लिए विभिन्न मंत्रिस्तरीय भूमिकाएं निभाने का उनका कार्य वैध था और किसी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं था। श्री मॉरिसन ने मीडिया से अपने परिवार की निजता का सम्मान करने और अपने परिवार के घर में दखल न देने का भी आग्रह किया।
As a member of parliament, of course I'm accountable and I'm happy to be here today. But members of my family have nothing to do with this. I would very much like that the cameras that sit outside my house each day and film my wife and my daughters going to school or going for a coffee or if they would like to have friends around or tradespeople coming, they have nothing to do with this. And so out of respect, but I would ask that you not invade the privacy of my family. I don't think that's an unreasonable request.
ये उनके चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पूर्व प्रधानमंत्री के संसद से इस्तीफा देने की मांग बढ़ने के साथ गुप्त नियुक्तियों पर गवर्नर जनरल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कॉट मॉरिसन की गुप्त मंत्रालय की नियुक्तियों में गवर्नर जनरल डेविड हॉर्ले की भूमिका को कई मौजूदा सांसदों द्वारा जाँच के दायरे में रखा गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई जनता को स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा खुद को वित्त, ट्रेजरी, स्वास्थ्य, गृह मामलों में और संसाधन विभागों में नियुक्त करने के कानूनी नतीजे अज्ञात हैं। सॉलिसिटर जनरल अगले सोमवार को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी को सलाह देने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में संवैधानिक कानून की प्रोफेसर एन टूमी संवैधानिक दृष्टिकोण से इन खुलासों के मुद्दे पर कुछ प्रकाश डाल रही हैं।
Create a document that authorised the Prime Minister to exercise powers under these various portfolios, and that would seem to be a valid constitutional act. So it would be constitutional in the big C constitutional sense, but the real problem is the secrecy of it, which undermines governmental transparency. It was all done in secret without the relevant transparency.
कर्मचारियों को जून तक साल भर में 2.6% वेतन वृद्धि मिली है। 6.1% की मुद्रास्फीति के साथ ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए वेतन के आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक मजदूरी पीछे जा रही है और घरेलू बजट पर दबाव डाल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वृद्धि से जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने के लिए बहुत कुछ करने की संभावना नहीं है। तिमाही आधार पर वेतन में 0.7% की वृद्धि हुई, जो सितंबर 2014 के बाद से वेतन वृद्धि की उच्चतम वार्षिक दर है। फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स कहते हैं कि आगामी जॉब एंड स्किल्स शिखर सम्मेलन इन चुनौतियों का समाधान करेगा जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को आर्थिक रूप से कठिन बना रही है।
We're pleased to see wages growth picking up again, but it's well short of inflation. And that means real wages are still going backwards substantially. So we've got wages growth picking up in welcome ways, but real wages falling because of the inflation challenge that we are currently dealing with. And so today we are releasing on behalf of the government the issues paper, which will inform the discussion at the Jobs and Skills Summit.
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक चुनौतियों की जांच करने और तत्काल और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए यूनियनों, नियोक्ताओं, नेताओं और सरकार सहित उद्योग के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है। क्राइमिया में विस्फोटों से हुए नुकसान के बाद हजारों निवासियों को पास के एक गांव से निकाला गया है। रूस से जुड़े क्राइमिया में एक गोला बारूद डेपो में विस्फोट और मॉस्को की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि यूक्रेन के प्रति वफादार समूह सैन्य रसद को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों में लड़ रहे अपने सैन्य को मजबूत करने के लिए क्राइमिया का इस्तेमाल किया है, जबकि कीव ने इस विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने का संकेत दिया है। रेलवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जबकि विस्थापित निवासी तमारा मोल्दोवस्काया वर्णन करती हैं कि जब उन्हें अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी तो आगे क्या हुआ।
They welcomed us here. We don't have any complaints. The only thing is that we want to go home as soon as possible. We want to know how's everything at home, what's happened there. We don't know at all. They've said that my neighbor's house was damaged, but we don't know for sure.
यूक्रेन के नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशंस महासचिव से मुलाकात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता स्टीफान दुजारिक का कहना है कि अंतोनियो गुतरश भी इस्तांबुल जाएंगे, जहां एक सौदे के हिस्से के रूप में रूसी अनाज और उर्वरक वैश्विक निर्यात बाजारों में भेजे जाते हैं।
The Secretary General will be in Lviv on Thursday to attend a trilateral meeting with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and the Ukrainian leader. The Secretary General will then go on to Odessa the next day, where he will visit the port that is one of the three being used as part of the Black Sea Grain Initiative.
New South Wales सरकार इस साल की विनाशकारी बाढ़ की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में एक नया आपदा निवारण प्राधिकरण, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निवासियों के लिए बचाव प्रशिक्षण और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बैक ऑफिस विलय का शुभारंभ करेगी। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने बताया कि उन्होंने और उनकी सरकार ने पूर्व मुख्य वैज्ञानिक मैरी ओकेन और राज्य के पूर्व पुलिस आयुक्त मिक फुलर द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में हर सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। प्रीमियर ने इस जोड़ी को हाल ही में आई बाढ़ के बाद वसूली और पुनर्निर्माण के प्रयासों की जांच करने का काम सौंपा था, जिस बाढ़ के कारण राज्य भर में 13 लोग मर गए थे। सुश्री ओकेन समुदाय की भूमिका पर जोर देती है कि वे मौसम के रुझानों पर बेहतर शिक्षित हो और भविष्य में इसी तरह की मौसम की घटनाओं का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो।
We don't know enough how much of this was climate change. We do know that the storms were not particularly unusual. They're well within the historic record. But what was unusual was the intensity of the rain and the fact that the rain stalled. And so this is a phenomenon that is probably could be there's more work to be done climate change, but certainly something that we've got to be on the lookout for. So we emphasize the importance of community being prepared, community knowing what to look for.
राष्ट्रीय शिखर संघ निकाय कार्यकर्ता अधिकारों में सुधार के लिए देशांतरण और प्रशिक्षण में सुधार के लिए अभियान चला रहा है। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस अस्थायी प्रवासी कामगारों के लिए व्यापक शोषण के बारे में चिंतित है। ACTU की अध्यक्षा मिशेल ओनियल ने ABC को बताया है कि यदि कर्मचारियों के लिए स्थितियों में सुधार किया जाता है तो वे प्रवास के स्तर में वृद्धि का समर्थन करती हैं।
We're saying any increase in the permanent migration cap has to be conditional on structural changes that deliver real wage growth. We've had a decade of wages being stagnant and now going backwards in real terms. We've got to make the economic changes that deliver wage growth for Australian workers.
अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.65 रुपये हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। टोक्यो 2020 खेलों में अफगानिस्तान के ध्वजवाहक और अन्य प्रमुख महिला खेल प्रचारकों को ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति की एक साल की पहल के बाद सुरक्षित रूप से ऑस्ट्रेलिया स्थानांतरित कर दिया गया है। AOC ने वित्तीय सहायता, दीर्घकालिक आवास और रोजगार प्रदान करते हुए वीजा, उड़ाने और स्थानांतरण सुरक्षित करने के लिए गृह विभाग के साथ काम किया। दो बार की ओलंपिक धाविका किमिया यूसुफी, उनकी मां और उनके तीन भाइयों में से एक 5 अफगान परिवारों में शामिल हैं, जिनका इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक से जुड़ाव है। खेल और शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के लिए उनके समर्थन को देखते हुए पिछले साल तालिबान के काबुल पतन के बाद ये पहल आई है। यूसुफी कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनके अन्य भाइयों को उनके साथ जुड़ने के लिए वीजा दिया जाएगा। वे पेरिस 2024 में तीसरे खेलों में भाग लेने के लिए जोर दे रही हैं।
Thank you so much, Government Australia and Government and Olympic Australia and everyone helped me and my family here.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में एकाध बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में आंधी और बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में भी आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।